ओम शांति। माला तीन बारी क्यों कहें ओम शांति, एक बारी इनफ नहीं है? दुनिया में भी मनुष्यात्माएं शांति पाठ पढ़ती हैं, परंतु जब हम ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं तो लौकिक तरह से नहीं, हमारे संकल्प में भी अलौकिकता है। शब्द उच्चारण करना अथवा ओम शांति ग्रीटिंग किस तरह नहीं कर रहे, एक दो को सिर्फ स्मृति दिलाने के लिए नहीं, परंतु पहले अपने आप स्मृति स्वरूप बनने के लिए। ओम शांति कहते ही पहले अंतर स्थिति, पहला ओम शांति कहा तो ओम शांति में बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो गए, और जितनी अंतर स्थिति अंतर्मुखी से अंतर स्थिति है तो हम उस आत्मिक स्थिति से फिर ऊपर जाते हैं। फिर ओम शांति बाबा को साथ में लाया ओम शांति में, वैसे ओम शांति में आत्मा हूं। पहले बारी ओम शांति कहा तो स्मृति है मैं आत्मा हूं, ओम शांति, ओम शांति, शांति धाम की वासी हूं, शांति के सागर की संतान हूं। और फिर जो ओम शांति है ये विश्व में अन्य आत्माओं को उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो स्मृति दिलाने की शांति है। इसीलिए बार बार हमेशा जब दादी बोलती हैं तो तीन बारी ओम शांति कराती है। अब हम रोज की दिनचर्या में, व्यवहार में, परिवार में, संसार में रहते हुए संस्कारों में अलौकिकता लावे। दिनचर्या में अलौकिकता तब आती है जब हमारे विचार, व्यवहार और संस्कार तीनों अलौकिक हैं। दूसरे शब्दों में हमारी स्मृति इस लोक वाली नहीं है, समझ इस लोक वाली नहीं है, हम कहां से आए हैं। मैं कर्म करने वाली आत्मा, कर्म योगी, कर्म क्षेत्र पर किस कॉन्शियस से उतर करके कर्म कर रही हूं। तो सुबह उठते ही बाबा ने कहा था कि जैसे ही आप उठते हो आंख खुलते ही पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा इस मंदिर की स्वच्छता। कोई भी उठेगा लौकिक रीति से भी पहली पहली दिनचर्या क्या है, मुख धुलाई करना, ब्रश करना। तो जैसे ही ये स्वच्छता शरीर की भी, जो एकत्रित प्रकार की कोई सोते हुए श्वास में भी उठेंगे तो स्वच्छ ब्रेथ जो है वो फ्रेश नहीं होगा। वो लौकिक रीति से ब्रेथ को फ्रेश करने के लिए ब्रश करते हैं, यानी श्वास को स्वच्छ करने के लिए ब्रश करते हैं, मुख को साफ करने के लिए स्वच्छ करते हैं। परंतु ये है, बाबा ने कहा तुम जैसे ही सवेरे उठते हो तो उस लौकिक कर्तव्य करते हुए उसमें अलौकिक स्मृति रहे कि इस मंदिर की मैं सफाई कर रहा हूं, इस मन के अंदर मंदिर में मैं चैतन्य ज्योति हूं ना। तो तन की सफाई के साथ साथ मन में शुद्धि व कर्तव्य करते हुए स्मृति जो है वो श्रेष्ठ रहे। ऑटोमेटिकली हम कर्म करते योगी बन जाएंगे, कर्म योगी। योग हमारा फिर सिर्फ शरीर सुंदर रहे, स्वच्छ रहे नहीं, परंतु मन भी स्वच्छ रहे। तन साफ है, मन शुद्ध है, बुद्धि दिव्य है। जब मन शुद्ध है, बुद्धि दिव्य है और हमारे प्रकृति के संबंध में आते भी स्वच्छता है तो सत्यता से कर्म करेंगे। सच्चाई और सफाई दोनों साथ साथ कहा जाता है, सफाई और सच्चाई। तो बाहर की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता और आत्मिक स्मृति की सत्यता। तो बाबा ने कहा था जब उस स्मृति से आप उतरो तो ऐसे ही समझो जैसे कि मैं फरिश्ता उतरा हूं, मैं साधारण आत्मा जागी नहीं हूं, उतरी हूं ऊपर से। कौन सा स्वरूप लेकर के उतरी हूं, किस स्मृति से इस कर्म क्षेत्र पर, इस कर्म इंद्रों का आधार लेने के लिए आज मैं फिर से यहां अवतार ले रही हूं, उतर रही हूं। तो कभी शांति का देवता, कभी पवित्रता का देवता, कभी सत्यता का देवता, कभी आनंद की देवी, वो अपने आप अपने दिव्य स्वरूप का जो आदि दिन आदि होते, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्मृति से उतरे। जैसे सतयुग की आदि आदि है, उसमें हमारे आदि में अनादि और अविनाशी गुण नेचुरल कर्म में और संस्कार में आते हैं, व्यवहार वहां भी वही है। उठेंगे, भोजन स्नान करेंगे, भोजन खाएंगे, दिनचर्या तो वही रहेगी ना, मेहनत वाली दिनचर्या नहीं होगी, परिश्रम वाली मेहनत नहीं दिनचर्या नहीं होगी, बड़ी आराम वाली और आनंद वाली दिनचर्या होगी ना। दिन में आचरण किस बात का, दिनचर्या का मतलब है कि दिन में हमारा आचरण कैसा है, किस बात को हम फॉलो कर रहे हैं। तो किस भी बात को फॉलो करने के लिए पहले जिस बात को मैं फॉलो कर रही हूं उस बात का मेरे पास लक्ष्य है। किसी ऐसे ही आप नहीं फॉलो करते, किसी की गाड़ी भी फॉलो करेंगे तो किसकी कहां पहुंचना है वो सामने लक्ष्य है ना। कोई भी गाड़ी को फॉलो नहीं करेंगे, किसी जिसके साथ जहां पहुंचना है साथ में उसकी गाड़ी को फॉलो करते हैं। किसी संत महात्मा को गुरु बना के फॉलो करते हैं तो उस पंथ को फॉलो करने का लक्ष्य। हमको बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको व्यवहार में लाने का लक्ष्य, लक्ष्य को सामने रख करके लक्षणों को से कर्म करते हैं। इसलिए हमारे सामने प्रवृत्ति में रहते हुए दिनचर्या में लक्ष्य हमारा विष्णु ही है। प्रवृत्ति में रहते वृत्ति को पवित्र बनाने के लिए स्मृति हमारी श्रेष्ठ है, और वो स्मृति है स्वादर्शन चक्र। अपने आप में हम उस किस स्वरूप में अपने आप का दर्शन कर रहे हैं, तो अंतर दर्शन अंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होते। जब हम अंतर्मुखी हैं तो बाहर से बाहर वाला रूप नहीं, वो लौकिक से अलौकिक देखने में आता, हर चीज को अलौकिक रीति से देखेंगे। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा, भोजन बनाते समय भी शरीर का सिर्फ भोजन नहीं खा रहे हैं परंतु आत्मा को भी शक्तिशाली बना रहे हैं, बुद्धि का भी भोजन है, शुद्ध संकल्पों का, शुद्ध विचारों का, ज्ञान जो है वो मन का भोजन है, बुद्धि का भोजन है। तो उठते ही मैं मेरी दिनचर्या जो है वो जैसे सतयुग की आदि है ऐसे हर दिन की अभी आदि है। सतयुग की आदि ये सत्य कर्म करने की आदि से मैं कर्म कर रही हूं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा का जो भी कर्म होगा वो दिव्य और श्रेष्ठ होगा। तो बेशक कर्म तो साधारण शरीर को स्वच्छ बनाते कर रहे हैं परंतु साथ साथ स्मृति बाबा की याद में वो कर्म कर रहे हैं। ज्ञान को व्यवहार में लाते जब कर्म करते हैं तो फिर वो संस्कार बन जाएगा, नेचुरल। संस्कार का मतलब कुछ काम नेचुरल हम करें, अपने आप बिना मेहनत किए वो व्यवहार में आवे। संस्कार को याद करके कर्म में नहीं आना होता है, संस्कार बिना याद किए अपने आप को दूसरा देखता कहता संस्कार ऐसा, संस्कार कर्म आके याद दिलाता है कैसा संस्कार है। तो वो हम जैसे हमारी स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म से हमारे दिव्यता दिव्य गुण वाला संस्कार जो है अलौकिक बन जाएगा, लौकिक नहीं। लौकिक रीति से हरी हरी में देर से अगर उठे हैं तो हरी होगी, लौकिक चिंता आएगी, वो भूल हो गई मेरे से, पर उठते ही गुड मॉर्निंग करनी है तो गॉड को मॉर्निंग करेंगे ना, गुड मॉर्निंग। अमृत वेले उठेंगे तो नेचुरली अलौकिक रीति से याद होगा, क्योंकि अमृत वेला अमृत पीने का वेला है। बेशक चाय कॉफी पीते हुए भी बैठेंगे, अमृत वेला याद आएगा, अमृत याद आएगा। पी रहे हैं चाय या कॉफी ताकि आंख नींद ना आवे, अलर्ट होकर के बैठे, क्योंकि रात को सोते समय सारे दिन की दिनचर्या के बाद अगर सोए हैं तो रात को जब सोए हैं तो क्या है कि वैसे भी ब्रेन नर्व जो हैं वो स्टिल हो जाती है, शांत है, रेस्ट में है, और फिर सोने के बाद उठे हैं और अपने आप को एक्टिव नहीं बनाया, बुद्धि को एक्टिव नहीं बनाया तो नींद आएगी। इसलिए कोई हर्जा नहीं है, चाय कॉफी पी रहे हैं, फ्रेश गर्म पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अमृत वेला मुझे करने का है, अमृत वेला मेरा अच्छा रहे। तो चाय कॉफी में भी अमृत भरा हुआ है, क्योंकि लक्ष्य है अमृत वेला, अलर्ट करने के लिए बैठना है, एक्टिव होकर के बैठना है, तब बाबा से रूढ़ियां भी अच्छी कर सकेंगे, बाबा से शक्ति भी ले सकेंगे। परंतु क्या कौन सा देवता बन के उतरा हूं आज, ये स्मृति। फिर बाबा ने कहा था कि आप अगर स्कूल में जाते, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, तो नशा रहे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, गॉडली स्टूडेंट बनकर के जा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ एक्टिव हर रोज बाबा नई नई शिक्षा देता है, नया लक्ष्य देता है, ध्यान हमारा खिंचवाता है कि हमको दिन में किस बात पर ध्यान रखना है। मुरली रोज की गाइडलाइन है, ऑटोमेटिकली अलौकिकता है कि हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तीन पीढ़ियां हम इकट्ठी पढ़ते हैं, चार पीढ़ियां इकट्ठी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। वैसे कोई स्कूल में जाएगा तो माँ सिर्फ बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे स्कूल में जाएंगे, हमको नशा है, हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, गॉड के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी है। तो जो व्यवहार है कर्म में टेंशन नहीं होएगा, नशा होगा, निश्चय और नशा दोनों साथ साथ है। फिर दिन में रहते व्यवहार में जो भी कर्म कर रहे हैं तो बाबा ने साधन बना दिए हैं, हमको दे दिया है तरीका, दिन प्रतिदिन हर बात में कैसे लौकिकता में अलौकिकता रहे। समृद्धि हमारी अलौकिक है तो वृत्ति भी हमारी दिव्य साथ अलौकिक और दिव्य है, दृष्टि भी दिव्य है। बाबा ने हमको, हम सबको दिव्य बुद्धि दी है, उसके साथ साथ और कौन सा वरदान मिला है? आप में से दिव्य दृष्टि का वरदान किन को मिला हुआ है? जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है हाथ उठे, वो थोड़े हाथ। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि का मतलब है कि ये हमारी दृष्टि भी अभी दिव्य बनी है। आप सबको मिला है दिव्य दृष्टि का वरदान, अभी तीसरा नेत्र खुला तो हमारी ये दृष्टि किस रीत किसको देखेगी, देह को देखेगी या आत्मिक भाव में देखेगी आत्मा को? लौकिक में हम लौकिक संबंध से देखते हैं, परंतु अलौकिक में अभी भोजन बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो पहले लौकिक में हस्बैंड क्या खाता है, बच्चे को पसंद क्या आता है, फलाने को क्या आता है, देहधारी याद आते हैं तब भोजन बनाते हैं। ये लौकिक कर्म में दिनचर्या में लौकिक याद आता है, अभी ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, शिव बाबा के भंडारे से बना रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारी जो अंदर की समझ है, निश्चय है कि हम बाबा के भंडारे से पलने वाले। बाबा ने कहा था कि आपका घर भी यज्ञ है, जब अब आप समर्पण और ट्रस्टी होकर के अगर रहते हैं तो बच्चे के लिए भोजन बना रही हूं या हस्बैंड के लिए भोजन बना रहे हैं या मुझे परिवार के लिए ये कुछ लाना है, नहीं, ये बाबा का यज्ञ है, हम यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। तो जैसे ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन ही बनाएगा ना। तो भोजन बनाते समय भी वो दिनचर्या में बाबा का भंडारा और ब्रह्मा भोजन, और भोजन बना करके बाबा को भोग लगा करके शुद्ध बना के फिर सिर्फ इस परिवार संबंध को नहीं, पहले बाबा को खिला के फिर खिलाना है, ताकि वो भोजन में जो भी प्रकृति से थोड़ा प्रभाव, क्योंकि मैटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर को। बेशक कहने में आता है कि हम शुद्ध भोजन खाते हैं, वेजिटेरियन भोजन खाते हैं, परंतु वास्तव में भोग लगाने की रस्म बाबा ने क्यों बनाई? खाना तो वैसे हमारा शाकाहारी है, फिर भी ये भोग लगाने की रस्म भक्ति में भी चली आती है, क्योंकि मैटर हर चीज को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशंस, किसी भी प्रकार का भी एटमॉस्फेयर। अभी तो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रूव किया है कि अगर पानी भी अगर है ना, पानी का कलर, पानी का डिजाइन, पानी के वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं यदि शुद्ध संकल्पों वाला पानी, पानी पीते हुए भी आपके संकल्प कैसे हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट, साइंस से लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। परंतु अभी आप जहां भोजन बन रहा है, भले हम कहते हैं भोजन है, जहां खेत में खेती उग रही है, आपस में भाई 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 का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, टेंशन से वहां खेत उग रहा है परंतु झगड़े में उग रहा है, मार्केट में आया कंपटीशन है, दुकान पर आया है तो करप्शन है। अब वो जो जहां गुस्सा है, जहां अशांति है, जहां कंपटीशन है, जहां करप्शन है, वो वातावरण फूड में ऑटोमेटिकली जो चीज अनाज भी बाहर से खरीदी ना, फल भी खरीदा बाहर से, उसमें वो प्रभाव है। अभी लौकिक में कोई भी बाहर से खाएगा ना, बाहर से खरीद करके गली में चलते हुए भी खा लेंगे। ब्राह्मणों का बड़े रॉयल्टी से खाना है, ऐसे चलते फिरते रास्ते में सड़क पर बैठे हुए खड़े हुए, क्यों बाबा ने ये एक नियम बनाया है हमारे लौकिक दिनचर्या में? अलौकिक तावे खाना पीना तो खाएंगे, परंतु ये अलौकिक है कि बाबा की याद में बना के ऑटोमेटिकली जैसे शरीर से वो जो आसक्ति है ना उससे अलग हो जाते हैं। भूख लगी भी हो ना, अब भोजन बना करके भोग लगाने का सिस्टम है, किसने का भी भोग नहीं लगा है, ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, कहेंगे अच्छा भोग लग जावे फिर खाएंगे, भूख तो लग रही थी। तो बाबा ने जो भी यज्ञ में नियम बनाए हैं उसमें हमारा बहुत फायदा है, हम प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति शुद्ध है, साथ साथ स्मृति श्रेष्ठ है, साथ साथ कर्म में ज्ञान भर गया, योग भर गया है, तो हम उसमें भोजन बनाते हुए, भोग खाते हुए, भोजन खाते हुए बाबा का भोजन खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, खाना खाली नहीं खा रहे हैं। दफ्तर में गए हैं, काम कर रहे हैं, जॉब है, क्या करे, टेंशन है, नहीं, बाबा ने कहा था आप कर्म योगी बनकर के सेवा पर जा रहे हैं, कमल फूल समान जीवन रहना है, तो बोलिए कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान रहने का है, ऐसा नहीं कि वहां का वातावरण हमारे पर प्रभाव डाले, नहीं, हमारा वातावरण उन पर प्रभाव डाले, हमारा जो मन की वृत्ति है, हमारी जो दृष्टि है, तो हमारी अब दृष्टि दिव्य बन गई है, तो हम बेशक देहधारी कोई आत्मा को देखते हुए भी अंदर यह है आत्मा है, कोई संस्कारवश है, कोई विकारवश है, कोई अवगुणवश है, बेचारी परवश है। अभी दृष्टि में दोष नहीं, दृष्टि में दया आ गई, दृष्टि तो वही है पर दिव्यता में दया आ गई, कोई भूल कर दिया क्षमा हो गया, इसका दोष नहीं है, परवश है। तो उसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे, रहेंगे तो लौकिक दिनचर्या में, व्यवहार में तो आना ही है। कभी कभी कोई कहता पता नहीं क्या मैं, ये जो जहां मेरा काम है ना, इतना डिफिकल्ट है वो जो मेरे साथ कार्य करने वाले हैं, इतने कड़े विचारों वाले हैं, इतने कड़े संस्कारों वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसे सुनाते हैं। तो दीदी क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या कर्मों का हिसाब किताब है। नहीं, अभी यहाँ पर भी अगर ऐसा सोचेंगे कर्मों का हिसाब किताब है, तो जो जो सेटल करने में, कर्म को चुकतू करने में मेहनत लगेगी। ऐसा समझ करके नहीं, यहाँ पर मैं कर्म का हिसाब किताब नहीं है, मैं पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ। कर्म का हिसाब किताब करेंगे तो फिर उस समय जो व्यवहार में उनके कमजोरी का असर हमारे पर हो जाएगा। ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए आया हूं, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो जिस प्रकार से अगर किसी का विरोध वाला पार्ट है, उसका पार्ट अगर विलन का है, तो मेरा पार्ट हीरो का है। अभी जिस समय ड्रामा में जो पार्ट प्ले करते, ड्रामा है तो सचमुच बाबा कहते हैं ये वैरायटी, दिन भर में तुम वैरायटी ड्रामा देख रहे हो, और ड्रामा कर रहे हो। तो एक्टिव एक्टर बनके और डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनके, उसमें लौकिकता में अलौकिकता आ जाएगी। एक्टिव एक्टर है तो किस बात को एक्शन में लाना है, गुणों को एक्शन में लाना है। बाबा को साथी बना लिया तो साक्षी होकर के दूसरों के व्यवहार को देखेंगे, उसके व्यवहार का असर नहीं होगा, परंतु अपने संस्कार और बाबा ने कहा था तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारा प्रभाव उन पर पड़ेगा, ना कि उनके विचार व्यवहार अथवा प्रभाव से तुम प्रभावित हो जाएंगे। बिना कॉन्फ्लिक्ट के उस चीज को हल करेंगे, क्योंकि आपने गुण से अवगुण को खत्म किया। एक है जहां गुण से गुण का व्यवहार होता है, वहां कर्म बंधन नहीं बनता। सतयुग में दैवी व्यवहार क्यों है, दैवी परिवार क्यों है, प्रवृत्ति डिवाइन क्यों है, क्योंकि गुण का गुण से व्यवहार है, उसका बंधन नहीं बनता है। और अगर अब भी कलयुग में कोई कर्म का हिसाब किताब अथवा बंधन है, तो उस समय बंधन है, कर्म का हिसाब किताब है, तो हिसाब किताब है तो चुकतू कैसे करे, तो अवगुण को अवगुण के साथ तो चुकतू नहीं करेंगे और बन जाएगा ना। अवगुण का अवगुण से जब व्यवहार है तो वो बंधन बन जाता है। अवगुण को गुण से खत्म करना है ना, जैसे आग जलगी है तो पानी से खत्म करेंगे ना, अंधेरा है तो दीपक जलाएंगे ना, गर्मी है तो पंखा सोचेंगे, ठंडक की बात सोचेंगे ना। तो किसी भी चीज को बिना झगड़े के खत्म किए, बिना कॉन्फ्लिक्ट के खत्म करना, मतलब गुण से उसको उस पर प्रभावित, अपना प्रभावित होकर के समझ करके उसको उसमें अपने गुण की शक्ति से हल करना। नहीं तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा, व्यवहार में दुख भी आएगा और कोई ना कोई कर्म ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है पढ़ाई का, सर्वगुण संपन्न। लोगों में गुण है परंतु दूसरों को गुण देने की कला नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप ऐसी अपने अंदर जीवन में गुण धारण करो जो अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिले आपके गुण से। किस समय कौन से गुण को कैसे यूज करना है, और बिगड़ी हुई को बनाना है, उसको कला कहा जाता है। साधारण को असाधारण बनाना, इसको कला कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। अभी आप देखो फ्लावर्स है, फ्लावर्स ऐसे ही हैं, परंतु तो कितनी सुंदर कलाकारों ने कितने सुंदर फूल बना करके, माला बना करके दादी जी के प्रकाश स्तंभ पर सजाए। लकड़ी छोटी सी है, साधारण चीज है, परंतु साधारण चीज को मोड़ तोड़ करके उसको सुंदर बनाना, उसको कला कहते हैं। तो ऐसे जो चीज वहां जिनके साथ हम व्यवहार में आ रहे हैं, गुण को किस समय कैसे हम यूज करें और उनके अवगुण को भी किस तरह से अपने अंदर मोल्ड कर लेवे, सोचने का तरीका बदल लेवे, तो हमारे व्यवहार में अंतर आ जाएगा। अब हीरो एक्टर है, पार्ट बजा रहे हैं, तो जो भी विरोधी है तो जरूर वो तो माया रसलर है, वो तो अच्छी तरह से टेस्ट लेने आएगी ना, पहलवान से पहलवान होकर के आएगी, रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ेगी, परंतु मेरे साथ कौन है। हीरो एक्टर सामने शेर आया परंतु उसने शेर को भी मार लिया, जंगल में कोई बहुत बड़ी तूफान की सिचुएशन है, उसने इतनी बड़ी बहादुरी दिखाई कि उसको पार कर लिया, समुद्र में डूबते हुए को बचा लिया। हम हर प्रकार की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को वो अपनी कोई ना कोई विशेषता से पार करता है तो हीरो एक्टर कहलाता है। तो जैसे हम लौकिक में फिल्म को देखते हैं तो उसमें हीरो को हीरो क्यों कहा, विशेष क्यों कहा, क्योंकि उसने अपने गुण और शक्ति को यूज किया। तो ऐसे जब हम किसी व्यवहार में किसके साथ पार्ट बजा रहे हैं तो कर्म का हिसाब किताब नहीं कहे, ये मुझे पार्ट बजाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने का चांस मिला है। जिसको बाबा ने कहा कि पढ़ाई में टेस्ट आया है तो टेस्ट तो नेक्स्ट क्लास में लेके जाएगा ना, तो सोचने की तरीका बदल गया, समझने का तरीका बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, स्वयं का दर्शन भी बदल गया, दूसरों को देखने का तरीका भी बदल गया। उसके लिए अंतर्मुखी स्थिति, बार 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 अपने आप से ओम शांति, कोई बात हो गई ओम शांति, अपने आप से ओम शांति। तो दादी जी ने जैसे पहले ये 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता था, तो कुछ समय से दादी जी की ये प्रेरणा थी कि हर घंटे 1 मिनट का साइलेंस हो। तो ये एक साधन है लौकिक दिनचर्या में अपनी चेकिंग करने का, 1 मिनट में अपने आप को देखने की शक्ति आ जाती है। सारे दिन में बीच बीच में मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, कर्म मेरा कैसा है, राज ऋषि वाला कर्म है, राज योगी वाला कर्म है, कर्म योगी वाला कर्म है, देवता वाला कर्म है, देवता वाला कर्म न्यूट्रल कर्म है, बाबा को याद करके बाबा को साथी बना करके कर्म कर रहा हूं कर्म योगी वाला कर्म है, पवित्रता की सुगंध वाला है राज ऋषि वाला कर्म है, सब प्रकार की बातों का संन्यास है, किसी चीज का प्रभाव नहीं है, रॉयल्टी भी है रिनंसिएशन भी है, उसमें अलौकिकता आ जाती है। मनुष्यात्माएं वैसे बाहर का रूप रॉयल दिखाती है परंतु पोजेसिव होके, आसक्ति होकर के, अटैचमेंट होकर के, हम राज ऋषि है, रॉयल्टी है, साथ साथ हमारे अंदर प्योरिटी है, रॉयल्टी है बहुत बड़े, हम जेनरस भी हैं तो साथ साथ त्यागी भी हैं, सन्यासी भी हैं। तो ये जो अपने टाइटल बाबा ने जो दिए हैं ना, कभी बाबा ने कहा होली हंस बन के रहो, तो दिन भर जो है जो भिन्न भिन्न प्रकार के टाइटल मिले हुए हैं उन टाइटल को सामने रखते हुए उस पोजीशन से किसी भी प्रकार की अपोजिशन है उसको दूर किया जा सकता है। लौकिक तरह दुख किसी से नहीं ले सकेंगे अथवा कर्म का हिसाब किताब समझ करके भारी नहीं होंगे, प्ले करेंगे तो जॉय से कार्य करेंगे। फिर रात को हो गया, शाम को हुआ, आज के पार्ट प्ले पूरा किया, फिर विश्राम कहाँ करना है। आप में से ऐसे कौन कितने हैं जो अपनी कार में सोते हैं, ऐसे हैं जो कार में नींद करते हैं, कोई है जो कार में नींद करते हैं, जिनको कार में सोने की आदत है, या कार है ही नहीं कार में नींद आ जाती है, रात को कार में सो जाते हैं, रात को नहीं कार में सो, दिन में कार में सोते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है रात को भी कार में कभी नहीं सो, ये शरीर को दिन भर मोटर चलाई ना, पहला लेसन लिया ना, शरीर क्या है, हमारी मोटर है ना, कार है। तो अगर दिन भर इसको चलाया कर्म करने के लिए ड्राइवर बन करके और रात को इसी में सो गए, नींद अच्छी आएगी? उठेंगे सुबह थके हुए उठेंगे, आराम की नींद तो नहीं आएगी। तो सारे दिन की दिनचर्या को खत्म करने से पहले फिर से शरीर रूपी कर्म इंद्रियों के बाजू से न्यारे होकर के, जैसे दादी जी कहती थी ना कि आज की दिनचर्या पूरी हुई है, तो दिन की एक्टिविटी को समेट करके बाबा की याद में दिल में जो बाबा की मधुर बातें हैं उनको समा के बाबा की गोद में सो जाए। तो बाबा की गोद में सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो फरिश्ता उतरेंगे, फरिश्ता अपने से भी शरीर से बदल गया ना, बाबा से शक्ति लेकर के हम उतरेंगे। तो सारे दिन में फिर अपने आप को बार बार जो भी एक एक मिनट की जो हर घंटे की चेकिंग है, ये बाबा ने इसलिए सुनाई ना कि एक सेकंड एक मिनट में, ये जो बाबा ने साधन दिया एक मिनट की ड्रिल, फरिश्ता अव्यक्ति स्वरूप की स्मृति है, फरिश्ता रूप की स्मृति है, पूज्य स्वरूप की स्मृति है, देवता स्वरूप की स्मृति है, ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति है, ये अभ्यास जो बाबा ने दिया है इसके अभ्यास से ऑटोमेटिकली हमारे विचारों के साथ साथ व्यवहार में अंतर आ जाता है, अलौकिकता आ जाती है। अभी फरिश्ता किसी से बात करेगा तो जरूर उसके में वो लौकिक नहीं होगा ना, देवता किसी से बात करेगा तो वो लौकिक नहीं होगा ना, नया जीवन बन गया ना, ये नशा है, नया जीवन है, लौकिक नहीं है अभी हम, देह में सभी लौकिक है, इसलिए लौकिक का मतलब इस लोक के रहने वाले, अलौकिक माना अव्यक्त स्थिति में रहने वाले, लौकिक नहीं, देह भान में रहना माना लौकिक, तो लौकिकता में व्यवहार को अलौकिक बनाना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करना। अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना, तो अशरीरी स्थिति में स्थित है तो जो शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो लौकिक में सब कुछ बाहर मुक्तता से देखते हैं। मैं अशरीरी आत्मा, आत्मा तो हूं पर शरीर की कर्म इंद्रियों के प्रभाव से परे हूं, अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति से फिर अव्यक्त कॉन्शियस बनती है, व्यक्तियों की तरह हमारा बोलचाल, व्यक्तियों की तरह हमारा व्यवहार, व्यक्तियों की तरह हमारा प्रभाव नहीं, वो अव्यक्त स्थिति बन जाती है। उस अव्यक्त स्थिति में हम जैसे कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से डिटैच हैं तो अव्यक्त है ना, और फिर वो न्यारी स्थिति है, यानी लौकिक रीति से नहीं, न्यारा कर्तव्य, हर कर्म वो ही कर रहे हैं परंतु न्यारा है। और बाकी अगर आत्मा है, किसी प्रकार का व्यवहार अगर सुखदायी व्यवहार नहीं है, उपराम है, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देख रहे हैं तो फिर लौकिक की तरह कर्म का हिसाब किताब नहीं बन, बॉडीलेस स्टेज, अव्यक्त स्टेज, न्यारी स्टेज, साक्षी स्टेज, उपराम स्थिति, उससे हमारे कर्म में अलौकिकता आ जाती है क्योंकि पारलौकिक के साथ संबंध जुट गया ना। तो बाबा को साथी बना करके कर्म करते हैं तो बाबा की गुण, ज्ञान गुण और शक्ति व्यवहार में आती है, ज्ञान गुण और शक्ति व्यवहार में आती है, बाबा को साथी बना के कार्य किया है तो। फिर उसमें भिन्न भिन्न शक्तियां रोज अपने आप में, जब हम हर प्रकार की शक्तियों को, एक एक शक्ति को, एक एक स्थिति को ध्यान से ध्यान रखते हैं ना, तो कर्म पर अपने आप ही, मन पर ध्यान है तो कर्म अपने आप ही कंट्रोल में रहता है। निराकार स्थिति में स्थित होकर के ऊपर से उतरा हूं, ऐसी स्थिति देह में न्यारे रहते देसी अशरीरी होकर के बैठा हूं, अव्यक्त फरिश्ता बन करके कार्य कर रहा हूं, तो पुरानी रीति से हमारा व्यवहार विचार नहीं होगा। टाइटल सारे जो बाबा ने दिए हैं दिन भर में, उसकी बार बार स्मृति रखें। बहुत बाबा ने युक्तियां बताई हैं, फिर एक एक शक्ति में कौन कौन सा गुण साथ में काम करता है, हाँ ये भी फिर एक बहुत अच्छी विचार सागर मंथन करके व्यवहार में लाने की बात है। हर शक्ति के कुछ विशेष गुण है, शक्ति के साथ गुणों का संबंध है, गुण से शक्ति। ज्ञान तो है हमको, ज्ञान योग में अभ्यास किया हमने, ज्ञान के आधार से योग लगाया, योग से धारणा हुई, उस धारणा की शक्ति से जो हमारा व्यवहार है वो अलौकिक हो जाता है, कर्मचर्या दिनचर्या अलौकिक हो जाती है। समय को देखते हुए अभी समाप्त करती हूँ, देर से शुरू किया है परंतु खत्म जल्दी करना चाहिए। ओम शांति।